देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। हम 16 संस्कारों की चर्चा कर रहे थे, बीच बीच में दूसरे फेस्टिवल्स आ जाते हैं तो ब्रेक रहता है। तो आज की ये पार्ट 4 है 16 संस्कारों में से। विवाह संस्कार है जो 13th संस्कार है, 13वां संस्कार है। पहले हमने डिस्कस किया प्रीनेटल सेरेमनीज, बच्चा पैदा होने से पहले गर्भाधान, सीमन पुंशवन और सीमंतो नयन। फिर आया आफ्टर बर्थ सेरेमनीज, तो मोस्टली 6 संस्कार हैं। सबसे ज्यादा बच्चा 1-1.5 साल तक होता है तो मोस्ट ऑफ सेरेमनी संस्कार आज करते हैं। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो संस्कार एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल संस्कार हैं, उनमें था उपनयन, फिर वेदारंभ, और जब बच्चा स्कूल से या कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलता है तो समावर्तन। तो जब पढ़ाई लिखाई करके अब बच्चा घर आता है, अब वो घर गृहस्थी संभालने के लायक है, पैसा कमाएगा, घर गृहस्थी बसाएगा, शादी करेगा, तो उसको जो सेलिब्रेट करने का नाम है, प्रॉपर चैनल से जाने का नाम है, उसका नाम है विवाह संस्कार। और विवाह जो हाउस होल्डर लाइफ जीने के लिए जो जो सेरेमनी हम करते हैं उसी को हम कहते हैं विवाह संस्कार। आजकल यही संस्कार ही सबसे इंपॉर्टेंट बच गया है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट नहीं रहे। विवाह संस्कार के आप गृहस्थी बनते हैं, मतलब हाउस होल्डर बनते हैं, मैरिड लाइफ आपकी होती है। इंटरेस्टिंगली हमारे जो वैदिक ट्रेडिशन या हिंदू ट्रेडिशन में ये एक व्यक्ति को 4 स्टेजेस में जीने के लिए रिकमेंड किया गया। पहला स्टेज ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसको आप स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, पढ़ना लिखना सीखना, ये लाइफ है, एक क्वार्टर ऑफ आपकी लाइफ है। अगर 100 इयर्स की एक एवरेज लाइफ स्पैन है तो लेकर चलिए 25 इयर्स, कोई हार्ड रूल नहीं है, तो कोई 20 साल में, कोई 18 साल में, कोई 25 साल में पढ़ाई पूरी करता है, मैक्सिमम 25-26 के बीच में, वन क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर आप घर गृहस्थी शादी करे, जो सांसारिक सुख हैं उन सुखों को जिए, बट इटे रेगुलेटेड वे, न कि पशुओं की तरह, एनिमल्स की तरह। जो एनिमल इंस्टिंक्ट इंसान के अंदर है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये मैरिज सेरेमनी होती है, ये गृहस्थ आश्रम है। तीसरा, जब आपके हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां लेने की उनमें क्षमता आ जाती है, तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो एक थर्ड लेवल के स्टेज में उनको जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम, मीन्स रिटायर्ड लाइफ, नॉट रिटायर्ड लाइफ फ्रॉम योर वर्क या ऑफिशियल जॉब, रिटायर्ड लाइफ फ्रॉम योर हाउस होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल तो हम जॉब से रिटायरमेंट ले लेते हैं, पर अपनी फैमिली लाइफ से अब रिटायरमेंट लेने की सोचते भी नहीं है, और जिसके कारण घर में कंफ्लिक्ट होता है, बेटे बहुओं से भारत में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सबको साथ रहना पड़ता है, सास ससुर भी चाहते हैं हमारी चले, बेटे बहू भी सोचते हैं अगर आपकी चलेगी फिर हमारी कब चलेगी, तो कंफ्लिक्ट बनता रहता है। उसका रीजन है कि हमें पता ही नहीं कि भाई अब ये जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर हमारे लाइफ में क्या रोल होगा, हम पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं। तो हमारे पूर्वज हमें ये रास्ता दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम, जहां आप अपने काम से तो रिटायरमेंट नहीं लेने का, पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना है। अब आप फैमिली से अटैच थे फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चे बड़े हो गए, अब आपकी वो सारा फोकस टाइम सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो सोसाइटी में और खुद की डेवलपमेंट के लिए और सोशल कम्युनल डेवलपमेंट के लिए लगाइए। जितना आप फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली अपने आप को एंगेज करते थे फैमिली के लिए, वो सब वहां से आप हटा के वो सब कुछ को आप सोशल डेवलपमेंट के लिए और अपने इंडिविजुअल जिसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस हो, अपने शरीर का ख्याल रखें, मन का ख्याल रखें, ईश्वर की साधना के लिए उपासना के लिए समय लगाएं और समाज की जितनी भला कर सकते हैं करें। और फोर्थ लाइफ है संन्यास आश्रम, जहां आप सोशल लाइफ को भी छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रियलिटी को जानने की एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हैं और उसी का नाम है संन्यास आश्रम। ये चार आश्रम में जनरली जो परसेप्शन है कि जो संन्यास आश्रम होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, डेफिनेटली जो त्याग करते हैं रिनाउंस करते हैं उनके प्रति होता है, पर हमारे शास्त्र कुछ दूसरा बोलते हैं, कहते हैं ये चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम होता है ये गृहस्थ आश्रम, शादीशुदा आश्रम। क्यों? बहुत सारे रीजन है, हमने सारे श्लोक तो नहीं, वो श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है ये मनुस्मृति का, यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः। जैसे नॉर्मल लाइफ में जो ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन पर सारे प्राणी टिके होते हैं, कोई भी क्रिएचर हो, लिविंग क्रिएचर हो, वो ऑक्सीजन पर टिका हुआ होता है, इसी तरह या वायु पर टिका हुआ है, उसी तरह ये गृहस्थ आश्रम पर सारा संसार समाज की हर वर्ग उसी पर टिका होता है, सरकार भी इसी से ही टैक्स लेता है, बूढ़े मां बाप की सेवा भी इसी को करना है, अपने बच्चों का ख्याल भी इसी को ही रखना है, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए इसी को ही सब कुछ करना है। तो सारे संसार में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं ह्यूमन सोसाइटी में, वर्ल्ड में, वो सब में ये गृहस्थी ही होता है जो कंट्रीब्यूट करता है, इसके बिना संसार नहीं चलेगा, तो इसको सबसे बड़ा महत्व दिया गया। खाली इतना नहीं, आप एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत कुछ रिनाउंस करना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए कि जहां आपकी सेल्फ इंटरेस्ट मिनिमम है, जहां आपकी मैक्सिमम इंटरेस्ट है कि दूसरों में आपके पति पत्नी बच्चे परिवार फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स सोसाइटी कंट्री नेशन रिलीजन स्पिरिचुअलिटी सबके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम के रूप में माना जाता है। शादी ना करे तो क्या होगा? तो शादी अगर ना करें तो मतलब अगर शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर नहीं होता तो होता क्या? होता कि इंसान जंगली जानवरों की तरह बिहेव करता। तो जो एक ह्यूमन नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर, जो फिजिकल डिमांड है या मेंटल जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए जानवर भी फुलफिल करते हैं। मैरिज, ध्यान रखिए, एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक नेगेटिव इंस्टीट्यूशन है जो नेचुरल इंस्टिंक्ट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। जो हमारे शारीरिक भूख है उसको या मेंटल जो ये है वो आप लाइफ में आपको एक रेगुलेटेड वे में हमेशा के लिए मिले, इसीलिए मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाया गया। नहीं तो ह्यूमन सोसाइटी भी जानवरों की तरह होता, कोई किसी का संबंध नहीं, कोई किसी का संबंध नहीं, व्यक्ति के लाइफ में कोई रेगुलेशन या नहीं होता। तो इसीलिए मैरिड लाइफ बहुत बड़े हिस्से में हमें रेगुलेशन जो संयम है वो सिखाता है, और डेफिनेटली इसके कारण एक बड़ा सुंदर ब्यूटीफुल सोसाइटी बनता है जिसमें एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स मिलता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां क्लियर कट होती है, एक दूसरे के साथ किस लिमिट तक हम बिहेव करें उसकी भी ये मैरिज सेरेमनी से ही सारा सारा डिफाइन हो जाता है, जिससे कि फिर आपकी कल्चरल जो वैल्यूज है जो धर्म है उसमें भी बूस्ट मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है ये जो पड़ाव है, जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज, जो इंसान को प्रैक्टिकली जानवरों से अलग कर देता है। हमारे वैदिक धाराओं में, हिंदू ट्रेडिशन में, विवाह या जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिसमें सेपरेशन की भी पूरे के पूरे पोटेंशियल बना रहता है। हिंदू ट्रेडिशन में मैरिज होना फुल एंड फाइनल होता है, ये लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट होता है। बड़े मजेदार बात, आपको पता होगा या नहीं होगा कि संस्कृत, पूरे संस्कृत लिटरेचर में, फॉरगेट अबाउट रिलीजियस लिटरेचर, मतलब एंशियंट इंडियन लिटरेचर में तलाक का, डिवोर्स का कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है, डिवोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा, सेपरेशन का कोई, सेपरेशन तो होता है कि आप कोई किसी से अलग रहता है, कुछ झगड़ा होना अलग स्वाभाविक है, कि कोई किसी से ऑफिशियली मैरिज जो इंस्टीट्यूशन वो ब्रेक डाउन हुआ, इसके लिए कोई डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट माना जाता था। इसमें हर चीज में आपको रास्ता ढूंढना पड़ता था, कैसे मैं रिलेशनशिप को बना के रखूं। और ये मैरिज सेरेमनी फैमिली सोसाइटी से लेकर के नेशन तक को कनेक्ट करने के लायक रास्ता होता था। शादी करने का उद्देश्य क्या होता था? इंसान के जीवन के चार जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, द एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, कोई मानता है नहीं मानता है, पर जो एक्चुअली हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, वो चारों सिर्फ और सिर्फ आप ये मैरिड लाइफ में ही फुलफिल कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्मार्थ काम मोक्ष। धर्म, कुछ अच्छा काम करना, धर्म का मतलब मंदिर जाना, पूजा पाठ करना कतई नहीं है, धर्म का मतलब अच्छा काम करना, डूइंग समथिंग वर्चुअस थिंग, वैल्यूएबल थिंग्स। ये इसीलिए पत्नी का दूसरा नाम धर्म पत्नी होती है, क्योंकि हर धर्म कार्य पुरुष को बिना पत्नी के नहीं करने का अधिकार है। और पता हो ना हो, यज्ञ करने और कराने का अधिकार उस पुरुष को तभी मिलता है जब वो मैरिड होता है। और पत्नी अगर नहीं है, तलाक हो गया है या जीवित नहीं है, तो उस पति का यज्ञ करने कराने का अधिकार भी प्राचीन काल में नहीं होता था। धर्म आपको मिलजुल के करने का नाम रखा जाता था, हर अच्छे काम। अर्थ, पैसा कमाना, वेल्थ कमाना, खर्च करना, अक्वायर करना, एंजॉय करना। काम, जो फिजिकल डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करना। और मोक्ष, डेफिनेटली जो फ्रीडम है, लिबरेशन है, उसके लिए प्रैक्टिस इसी गृहस्थ आश्रम में ही चारों को आप फुलफिल कर सकते हैं। संन्यास में बाकी तीनों स्टेज में आप एक या दो को कर सकते, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास में आप धर्म और मोक्ष करने की राइट रखते हैं। अर्थ और काम, पैसा कमाना, पैसे के प्रति को इकट्ठा करना, खर्च करने का आपको राइट नहीं होता है। इसी तरह जो काम है वो तो एब्सोल्युटली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का काम सिर्फ गृहस्थ आश्रम में। ये चारों जो इंसान के नेचुरल एस्पिरेशन है उसको सिर्फ गृहस्थ आश्रम ही फुलफिल किया जाता था। अब आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेकेंड टॉपिक है, जितने भी एक ह्यूमन सोसाइटी में जितने तरह की शादियां होती थी। आप तो कहेंगे हम तो सब एक ही तरह की शादियां जानते हैं, क्योंकि आप दूसरे तरह के लोगों को जानते नहीं है, या उनको आप पढ़ते नहीं या जानते नहीं। सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, बुरे से बुरे भी, अच्छे से अच्छे भी, और लोगों के साथ बहुत तरह की सिचुएशन गुजरता है। तो अलग अलग सिचुएशन से जितने तरह के भी खराब से खराब और अच्छे से अच्छे जितने तरह के भी एक मेल और फीमेल की यूनियन होता है एक प्रॉपर प्रोसीजर से, उसको 8 तरह से हमारे शास्त्रों में क्लासिफाई किया। ये 8 तरह की शादियां होती हैं और उनको मान्यताएं भी मिली है, पर जरूरी नहीं कि मान्यता मिलने का अर्थ है कि वो प्रशंसनीय है, कमेंडेड है। उनमें 4 तरह की शादियां ऐसी होती हैं जिनको प्रशस्त कहते हैं, मतलब जो कमेंडेड हैं, अप्रिशिएबल हैं। 4 जो है वो निंदनीय है, क्रिटिसाइजेबल है, पर तब भी सोसाइटी में ये 8 तरह की शादियों को मान्यता मिलती थी, जिसको हमारे शास्त्रों में एक तरह के क्लासिफाई किया। तो कहते हैं चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चैहिताहितम् अष्टाविमान समासेन स्त्री विवाह निबोधत। ये मनुस्मृति का श्लोक है। बेसिकली ये जो शादियों का जो क्लासिफिकेशन है ये स्त्री की एंगल से, डायमेंशन से देखने की कोशिश की गई, ये लड़की के साथ क्या गुजरता है उसके बेस पर उसको 8 तरह से क्लासिफाई किया गया। वो 8 कौन है? ब्राह्मो दैवस्तथैवार्ष प्राजापत्यस्तथा सुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाश्चाष्टमो धर्मः धमः। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, इस तरह 8 तरह के शादियां हैं। उनमें जो सबसे लोएस्ट और वर्स्ट कैटेगरी है वो पैशाच कैटेगरी है। उनमें से 4 और आजकल 5वां भी काफी पॉपुलर है सिविलाइज सोसाइटी में, 3 जो है वो अनसिविलाइज सोसाइटी में होता रहता है। सबसे पहले ब्राह्म शादी, जो ब्राह्म विवाह, व्हेन वन हिमसेल्फ इनवाइट्स द ग्रूम। ये ब्राह्म विवाह उसको कहते हैं जहां लड़की के परिवार वाले एक अच्छे सिविलाइज्ड पढ़े लिखे ज्ञानी समझदार लड़के को अपने दामाद के रूप में या लड़की अपने पति के रूप में चूज करती है और उसको प्रॉपर फॉर्मल रेस्पेक्ट के साथ इनवाइट करके उसके साथ बेटी की शादी कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्राह्म विवाह। ये जो आप देखते हैं ना, दूल्हा घोड़े पर आता है अपने आप लोग बारात निकालते हैं, ये ब्राह्म विवाह का थोड़ा इन्फ्लुएंस उसमें, जहां एक्चुअली लड़की के घर वाले शादी के होस्ट होते हैं, लड़का को इनवाइट किया जाता है ऑफिशियली। आज भी भारत में जो ट्रेडिशनल लोग हैं, शादी से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, शादी किस तरह का हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एक ऑफिशियली लेटर जाता है लड़की के घर की तरफ से। और मजेदार बात है वो लेटर संस्कृत में लिखा हुआ बनावट फॉर्मेट होता है, उसको सिर्फ लड़के के घर जाता है, उसमें लिखा होता है, उसका भाव है कि सो एंड सो, हम अपने लड़की के माँ बाप ऐसे आपको अपनी बेटी के पति के रूप में स्वीकार करने के लिए अमुक डेट को इतने बजे हम आपको अपने घर में इनवाइट करते हैं, आप अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ आइए, हम आपका यथा योग्य सम्मान करेंगे। वो इनविटेशन जाता है लड़के के घर और लड़का अपने बारात जिसको आप कहते हैं अपने बंधु रिश्तेदारों के साथ लेकर आता है, फिर आप घर जब पहुंचता है तो लड़की के घर वाले उसके स्वागत करते हैं, वेदी पर भी मधुपर्क वगैरह के थोरो स्वागत होता है, वो इनवाइट किया जाता है और उसको प्रॉपरली रेस्पेक्ट दिया जाता है अपने घर में क्योंकि वो गेस्ट है, और एक प्रॉपर विधि से उसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। ये पहला विवाह कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी उसको दैव विवाह कहते हैं। प्राचीन काल में व्यवस्था थी, जो ऋषि मुनि लोग होते थे या यज्ञ कराने वाले लोग होते थे तो वो लोग जंगल में तपस्या करते थे, गुरुकुलों में रहते थे, उनकी सोसाइटी के साथ बहुत इंटरेक्शन नहीं होता था, पर वो सब साथ विवाहित होते थे। वो आजकल की तरह ये कोई भी उठा करके कपड़े बदल के बिना शादी के घूमते हैं और सारे सोसाइटी को करप्ट करने वाले नहीं होते थे। आपको बहुत मुश्किल से कोई एक लाखों में कोई एक ऋषि मुनि मिलेगा जो बिना शादीशुदा रहा होगा। और आजकल तो जिसको भी देखे उठा के सब सन्यासी शादी बिना शादीशुदा। उसका होता क्या है, उसका जो सबसे बड़ा बैड साइड इफेक्ट होता है वो करप्शन बढ़ता है और हिपोक्रेसी भी बढ़ती है। तो जब कोई परिवार यज्ञ की वेदी पर जो भी ऋषि मुनि आचार्य जो भी होते हैं पुरोहित, उनके साथ जो अपनी कन्या को शादी कराता है उस कन्या की शादी को दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह में देन लेन होता है। आजकल के जो दहेज जिसको आप कहते हैं, पर उस समय उल्टा दहेज चलता था, लड़की वाले दहेज लेते थे, लड़के को देना पड़ता था। आजकल भारत में उल्टा होता है, आज भी होता है जी। इवन ये एनआरआई लड़के भी बड़े बदमाश होते हैं, बहुत लूटते हैं जाकर के, वहां परेशान करते हैं। पर इंटरेस्टिंगली जितने भी देने लेने की सिस्टम था, लड़के वाले लड़की वालों को देते थे। मतलब आजकल लड़के बिकने लग गए हैं। ये शुरू होता है पहला विवाह, आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह इसको कहते हैं जहां लड़की के घर वाले लड़के से कुछ ना कुछ डिमांड में लेते थे। मिनिमम रिक्वायरमेंट था गाय, उस समय गाय और बैल की भी काफी काफी वैल्यू था, क्योंकि ये आपके हर तरह के अपने खेती के उसके दूध वो एक रिचनेस होने का सिंबल था। तो कम से कम दो जोड़े गाय या बैल उसके बदले लेना पड़ता, लेना हो तो उसको आर्ष। बाकी सारे रिचुअल सेम है, वो ब्रह्म विवाह दैव विवाह हो कोई भी हो, अगर उसमें लड़के वालों ने लड़की को कुछ दिया जिसको आजकल आप दहेज कहते हैं, तो वो आर्ष विवाह कैटेगरी में आता था। अगला है प्राजापत्य विवाह, जिसमें देन लेन है पर एक दूसरे टाइप की देन लेन, जहां बेटी के पेरेंट्स ये कंडीशन रखते हैं कि मेरी बेटी के शादी के बाद तुम दोनों हर काम टुगेदर करोगे, साथ करोगे। आजकल ये बहुत पॉपुलर, आजकल जो मोस्टली पॉपुलर जो सेंटिमेंट है वो प्राजापत्य विवाह से मैच करता है कि लड़का लड़की जो भी काम करोगे, हर वो कार्य आप ड्यूटीज आप टुगेदर करोगे। यहां ड्यूटी को डिफाइन किया गया है, द टर्म ड्यूटी इज द सेड एक्सप्रेशन स्टैंडिंग फॉर प्रॉपर्टी एंड प्लेजर ऑल्सो। तो जो भी आपकी फैमिली या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप मिलके करोगे, जो प्रॉपर्टी है उसकी राइट भी दोनों को बराबर मिलेगा, जो प्लेजर है जो आप एंजॉय करोगे वो भी बराबर करोगे। और सिर्फ मां बाप कंडीशन रखते नहीं है, फिर उस लड़के से ये बुलवा रिपीट करवाते हैं वो मंत्र के द्वारा कि हां मैं ये फॉलो करूंगा। जब वो उसे रिपीट करवाते हैं, एक्सेप्ट करवाते हैं वो कंडीशन को, उस शादी का नाम होता है प्राजापत्य। अल्दो आज की डेट में आपको लगेगा प्राजापत्य सबसे परफेक्ट बढ़िया शादी है, क्योंकि जहां दोनों को बराबर वो मिलता है। पर प्राचीन काल में ब्रह्म विवाह को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था। शायद उसके पीछे कारण था कि प्राजापत्य में भी कंडीशन छुपा हुआ है कि इस कंडीशन पर ही आप शादी कर सकते हो। और शादी की जो पहली चीज होनी चाहिए वो होता है अनकंडीशनल लव, नो एक्सपेक्टेशन किसी भी साइड से। इसीलिए ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया। पर प्राजापत्य आपको कंटेम्प्रेरी ज्यादा अप्रिशिएबल लगेगा। इन चार विवाहों को प्रशस्त विवाह कहा जाता है, कमेंडेड या आप कहेंगे अप्रिसिएटेड है। इनको सोसाइटी में काफी रेस्पेक्ट मिलता था, सम्मान मिलता था, इनको अच्छा माना जाता था। और भी चार विवाह हैं, अच्छा माने न माने वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, बहुत लोगों को मजबूरन करना पड़ता था। उनमें एक शादी है आसुर शादी, आसुर विवाह, जिसमें लड़की वालों को लड़के वाले उनके मन मांगे मुताबिक उनको देना पड़ता था दहेज, जैसे आजकल होता है। ये आसुर विवाह जो दहेज लेने की शादी है वो है आसुर विवाह। आजकल लड़के मांगते मन मुताबिक, हमें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, फ्लैट चाहिए, ये सब चाहिए, तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये आसुर कैटेगरी में आता है। जहां भी देना लेना छुपा रहता है तो वो सेकंड कैटेगरी का, खराब कैटेगरी में शादी में आता है। तो आसुर वो एक आर्ष विवाह में तो एक लिमिटेड था कि भाई एक जोड़े गाय एक बैल काफी है, पर आसुर विवाह में टोटली डिमांड हो, जब सेटिस्फाई करना पड़ता था लड़की वालों को उनकी जो भी डिमांड है, ऐसी शादी को आसुर विवाह। आजकल के जो डाउरी वाली शादियां हैं वो आसुर विवाह में आते हैं। गांधर विवाह आजकल बहुत पॉपुलर है, वो हमेशा से पॉपुलर रहा, वो क्रिएट जब से ह्यूमन बींग पैदा हुआ तब से ये एक पैरेलल शादी और बहुत पॉपुलर शादी है गांधर विवाह। क्या लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा पाजी, कोई मां बाप चाहे न चाहे लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते शादी कर लिया, जरूरी नहीं कि वो फेरा ले वेदी पर बैठे अपना माला एक दूसरे पर, पहले जमाने में बस एक दूसरे पर माला डाल देते थे, हो गई शादी जी हमारी शादी हो गई, कोई पूजा नहीं कोई संस्कार की जरूरत नहीं, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में मान लिया, माला चेंज कर लिया। हो सकता है आजकल चॉकलेट खाकर भी शादी कर लेते हो, भाई हो गए हस्बैंड एंड वाइफ, बस एक मन मिलना चाहिए, है ना। तो इसको कहते हैं गांधर विवाह। ये हमेशा से उस समय भी आज भी उन लोगों में पॉपुलर रहा जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या सिविलाइज्ड नहीं है, और प्राचीन काल में माना जाता था। और आज भी इसके जो सोर्स है, ये गांधर विवाह की जो सोर्स है वो पैशन और लस्ट इसकी सोर्स होता है, इसी के कारण से ये रिलेशनशिप डेवलप होता है। राक्षस विवाह, जहां लड़की को उठा के जबरदस्ती ले जाते हैं और कोई ले जाता है और शादी कर लेता है, ऐसा भी बहुत होता है अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में या ऐसी वर्ग में, ऐसे भी बहुत शादियां होती हैं जहां लड़का उठा के ले जाता है, पर उसको मान्यता देनी पड़ती है क्योंकि लड़की की आफ्टर ऑल फ्यूचर की सवाल है, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह, जहां किसी लड़की को उसको डिसेप्टिव वे में, जब वो सोई हुई हो या उसको शराब पिला के या अनकॉन्शियस स्थिति में उसको उठा के ले जाते हैं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखते हैं या शादी करते हैं, इसको पैशाच विवाह करते हैं, जो सबसे लो क्वालिटी का विवाह है, जिसको पशु विवाह के समान भी, मतलब ऐसा भी कहा जाता है एक तरह की ये एनिमल बेसिस्ट ऑफ मैरिज सबसे खराब विवाह है। ये चारों को अप्रशस्त सोसाइटी में ये इनकी रिकॉग्नाइजेशन था, पर इनको बहुत ज्यादा इनको रेस्पेक्ट नहीं होता था। मनुस्मृति में लिखने, मैं आपको यहां मोस्टली मनुस्मृति को कोट करता हूं, पर ध्यान रखिए मनुस्मृति अकेला नहीं है, हमारे यहां 18 स्मृति शास्त्र हैं। स्मृति शास्त्र डेफिनेटली बेसिकली वो डील करते हैं सोसाइटी फैमिली इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो स्मृति शास्त्र डील करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह के नंबर डेफिनेशन भी होते हैं, पर बेसिकली मनुस्मृति ज्यादा पॉपुलर है, पर बाकी स्मृतियों का भी अपना अपना विचार रहता है, कुछ विचार अलग भी होते हैं। तो मनुस्मृति में कहता है पंचानाम तो त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यो स्मृता विह पैशाश्चासुरश्चैव न कर्तव्यो कदाचन। ये आठों को डिस्क्राइब करने के बाद मनुस्मृति कहता है कि ये आठों में से जो पांच है वो लॉफुल हैं, तीन जो है वो लॉफुल हैं, जो लास्ट के पांच हैं जहां से आप असुर से शुरू करते हैं, तो उसमें दो तो लॉफुल है गंधर्व और राक्षस को, बाकी तीन जो है वो अनलॉफुल हैं, और सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी की है पैशाच और असुर, जहां आप खरीदारी करते हैं या लड़की को डिसेप्टिव वे में शादी करते हैं, ये तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग करते हैं और इसीलिए उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो बेसिकली ये 8 तरीके से विवाह करने, विवाह की प्रथा चलती थी, ऐसा नहीं कि चलती थी, आज भी होता है अलग अलग सोसाइटी में, थोड़ी बहुत तो वेरिएशन के साथ आपको 8 नहीं तो ये 7 तरह के जरूर आपको विवाह मिलेंगे। अब आते हैं शादी के बाद के बारे में, जो हमारे शास्त्रों के रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा परिवार के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, कहते हैं संतुष्ट हो भार्य या भर्ता, भर्त्रा भार्या तथे वच यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वही ध्रुवम। जिस घर में पति, अब शादी आपने, विवाह संस्कार क्यों हुआ, क्योंकि आपको गृहस्थ आश्रम में, हाउस होल्डर लाइफ में जाना है, जाना है क्यों, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 तरह की जो बेसिक एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करना है। पर वो तभी होगा ना जब पति और पत्नी एक दूसरे से खुश हो। तो जिस परिवार में पति और पत्नी एक दूसरे को खुश करते हैं, खुश अपने आप नहीं होने का है, जहां पत्नी से पति खुश हो और पति से पत्नी खुश हो, वो घर स्वर्ग के जैसा होता है। स्वर्ग कोई दुनिया में क्लाउड के ऊपर नहीं होता है। जब आपके घर में सब सुख और शांति में होता है, बच्चे आपके अच्छे होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, अच्छा काम करते हैं, पति और पत्नी के बीच में मिनिमम झगड़ा होता है, एक दूसरे को झगड़ा हो वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, वो प्यार तो कोई भी बोल देता है, वो मारपीट के बाद भी आधे घंटे के बाद बोल देते हैं आई लव यू, वो तो डिसेप्टिव है, वो रेस्पेक्ट तो दिखता है, आपके अंदर रेस्पेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो, जिस तरह के टोन यूज करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, दैट इटसेल्फ इज द एविडेंस कि आप रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। प्यार के नाम पर तो हमने पूरा नेटवर्क को, वो डिसेप्टिव नेट बना रखा है, कोई भी आसानी से कंफ्यूज्ड हो जाएगा, मतलब 2-4 गालियां दी, बाजार जाके गिफ्ट ले आए, लो जी हो गया, आई लव यू, लो गिफ्ट लो, तो खुश हो गया सामने वाला, तो ये तो डिसेप्टिव है, रेस्पेक्ट तो देखना चाहिए। तो एक दूसरे को जहां रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एबिलिटी हो, तो फिर वहां घर में सुख शांति बनी रहती है, और सुख शांति ना हो तो फिर नरक, इससे बढ़िया नरक आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहां पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते हो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आपको और कहीं नरक जाने की जरूरत नहीं, बना बनाया रेडीमेड नरक आपको अपने घर में मिल जाता है। जिनके घर में, जो बदकिस्मत वाले होंगे, तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि घर की हालत क्या होती है जब पति पत्नी में नहीं बनती है। और एक चीज इंटरेस्टिंगली, ये थोड़ा ये एक दूसरे बराबर से थोड़ी अलग चीजें हैं, वो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियः, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्फलम्, न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्हि सर्वदा। जिस घर में पति पत्नी की एक दूसरे को खुश करना वन थिंग, द सेकेंड थिंग इज, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वो महिला मां हो, पत्नी हो, बेटी हो या पोती हो, किसी भी जनरेशन का हो, रेस्पेक्ट नहीं होता, उस घर में भगवान भी नहीं टिकता। और जिस घर में पत्नी का या महिला का, इट्स नॉट अबाउट वाइफ, महिला का रेस्पेक्ट होता है, डेफिनेटली वहां ईश्वर का भी वास होता है। और जिस परिवार में स्त्रियां दुखी हो, रोती हो, परेशान रहती हो, मनी मन कुटती रहती हो, उस घर में भगवान भी नहीं टिकता। ये इसलिए कि महिलाएं फिजिकली डेफिनेटली पुरुषों से कमजोर होने से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में स्त्रियों को दबाया जाता है, बोले ना बोले अंदर दुखी रहते हैं। और जिस भी घर में महिला दुखी है डेफिनेटली वो घर नरक जैसा होता है। तो घर को स्वर्ग अच्छा बनाने के लिए घर की महिलाओं को रेस्पेक्ट देना शब्द है पूज्यंते, प्रेम नहीं बोला। जिस घर में महिलाओं को रेस्पेक्ट देना जरूरी है, अगर उस घर में हम चाहते हैं कि कोई सात्विकता कोई पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहे। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया, मजेदार सॉल्यूशन। क्या बोला? बोला खुश करने के लिए क्या तरीका है महिलाओं को, पत्नी को, जब भी कोई फेस्टिवल हो पार्टी हो तो खूब ज्वेलरी बढ़िया बढ़िया कपड़े है रेस्टोरेंट ले जाना, अभी आजकल भी करते हैं। पर देखिए ह्यूमन रिलेशनशिप तो सेम है ना, 40,000 पहले भी यही होता था, जब जंगल में रहते थे लाखों साल पहले तब भी वही इमोशन था, आज भी वही है। सिविलाइज्ड हो जाने से इमोशन नहीं चेंज होता है। तो तब भी लिखा तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादना शनैहि, ये इसीलिए ये पूजनीय है, इनको रेस्पेक्ट करो, इनके मन पसंद ज्वेलरी दो रेगुलरली। जो यंग बैठे हैं आपके लिए भी मैसेज है अच्छा आदना, अच्छे अच्छे कपड़े, और खाना मतलब घर का खाना नहीं, उनकी बनाया हुआ नहीं, रेस्टोरेंट में ले जाओ, और उनके कहने पर नहीं आप अपने तरफ से। और क्यों, बड़े मजेदार बोला, जिनको भूति चाहिए जिनको घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए उनको ये करने की जरूरत है, जिसको नहीं चाहिए फिर तो मत करो। और कहता है डे टू डे लाइफ में तो रेस्पेक्ट करो ही, सत्कार उत्सवेशु जब कोई फेस्टिवल हो कोई त्योहार हो कोई सेरेमनी हो जरूर अपने घर के महिलाओं को या पत्नी को ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करके उनको रेस्पेक्टेड फील कराना, ये पुरुषों का एक्स्ट्रा ड्यूटी है टू मेक फील देम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मनुस्मृति कह रहा है, तो पुरुष लोग मुझे कंप्लेन नहीं करना, महिलाएं बहुत खुश होंगी पर आपको भी मनुष्य से बात करनी, अब बड़े नेचुरल चीज है। अब आते हैं, एक दो मिनट और लेंगे। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि शादी के बाद हर गृहस्थी हस्बैंड एंड वाइफ को 5 चीजें रेगुलरली करने की जरूरत है, आज सोशल हाउस होल्डर्स ड्यूटी। डे आफ्टर डे द ट्वाइस बर्न शाल परफॉर्म द 5 ग्रेट ड्यूटीज, ही शाल नेवर ओमिट देम। कभी भी इन 5 को के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, जो भी शादीशुदा लोग हैं वो क्या, ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ नृ यज्ञ और अतिथि बलि वैश्व देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ में क्या करते हैं, ऑफरिंग करते हैं। ब्रह्म यज्ञ जहां ईश्वर को आप परमात्मा को ऑफर करते हैं, कैसे, बोला स्वाध्याय सेल्फ स्टडी और ईश्वर भक्ति ये रोज करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। उसके बाद बोला पितृ यज्ञ कैसे करें, पितृ मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए ऑफर करना, कैसे, मरने के बाद वो गया में और हरिद्वार में पिंड चढ़ाने से नहीं, जिंदा मां बाप को उनकी सेवा करना रेस्पेक्ट करना उनको सत्कार करना, ये पितृ यज्ञ है, रोज करने की बात है। रिमेंबर ये डेली ड्यूटीज हैं। देव यज्ञ, देवता संसार के परमात्मा से लेकर पेड़ पौधा जो भी नेचुरल चीजें हैं जिनके कारण हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, उनके सबके प्रति ग्रेटफुल होना थैंकफुल होना और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी उपाय करना, पानी गंदा ना हो हवा गंदा ना हो सब ठीक हो, उसके लिए एक माध्यम बताया, देव यज्ञ, अग्निहोत्र, अग्नि में आहुति डालना प्रॉपर विधि से, जिससे कि एटमॉस्फेयर क्लींस बना रहे। भूत यज्ञ, जहां आपके आसपास जो पशु पक्षी प्राणी हैं उनको लिए कुछ अपना हिस्सा, खाना पीना जो भी है, जो भी पशु पक्षी हैं उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना। नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ, जो आपके घर में बिना बुलाए कोई मेहमान पहुंच जाता प्राचीन काल में, आजकल तो बिना बुलाए तो कुत्ता भी नहीं आता है आपके घर में, आजकल इंसान तो क्या आएगा। तो बिना बुलाए आने का कारण, उसकी जो कंडीशन था वो समझने की जरूरत है। बिना बुलाए वही आता था पहले जमाने में, जिसको भूख लगता था, जो परेशान था, जो नीडी था, वो दरवाजा खटखटाता मुझे हेल्प चाहिए। आजकल आपके घर में ऐसा कोई आने वाला नहीं है, सोसाइटी नहीं है। फिर क्या है अतिथि यज्ञ कंटेम्प्रेरी वे में, जो भी नीडी लोग हैं सोसाइटी में, गरीब है, अनाथ है, ओल्ड लोग हैं, जिनको भी जरूरत है, या कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा कोई नीडी लोगों के हेल्प करने के लिए काम करते, उनको डोनेशन देना, उनको हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ, उसी को कहते हैं। और मनुस्मृति और सारे स्मृति शास्त्र कहते हैं जो अपने जीवन में देवताओं की सेवा, प्रतिदिन देवताओं की उपासना नहीं करता, ईश्वर से लेकर और ये नेचुरल एलिमेंट की ख्याल नहीं रखता, जो अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखता, जो डिपेंडेंस का ख्याल नहीं रखता, उनको हेल्प नहीं करता जो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो खुद का अर्थ अपना नहीं, अपना तो ख्याल रखते हैं, आत्मा का ख्याल नहीं रखता, वो सांस लेते हुए भी मुर्दा की तरह होता है। इसीलिए देवियों सज्जनों, गृहस्थी जीवन में ये जरूरी है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, ईश्वर से लेकर गेस्ट शब्द से, यहां ये अंग्रेजी में गेस्ट शब्द ये है, पर अतिथि का मतलब जो नीडी आपको अचानक आपके दरवाजा खटखट आता है, कंटेम्प्रेरी वे में जो नीडी लोग हैं जिनको जरूरत है उनको हेल्प करना, पेरेंट्स का साथ देना और अपने सेल्फ को डेवलप करना, ये जो लोग नहीं करते उनका जिंदा होना उनके लिए भी बेकार है, जिंदा होना ना होना बराबर है, इसलिए ये हम आप पालन करते रहना चाहिए। तो ये बेसिकली विवाह संस्कार का एक ओवरऑल जो शास्त्रीय विचार था आपके सामने रखा। अगले बार तो हम जनवरी 26 सेलिब्रेट कर लें रिपब्लिक डे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 14वां और 15वां और 16वां 14th, 15th and 16th संस्कार, वानप्रस्थ, रिटायर्ड लाइफ कैसे होना चाहिए। बहुत लोग यहां भी हम देखते हैं रिटायरमेंट के बाद पता ही नहीं क्या करना, लाइफ को कैसे जीना, कितने फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर आवर शास्त्रज आर प्रेस्क्राइबिंग टू लिव ए रिटायर्ड लाइफ। और रिटायर्ड लाइफ को दो तरह से बांटा, एक शुरुआती एक बाद में। शुरुआती को वानप्रस्थ, 5-10-15 साल के बाद को संन्यास, और आफ्टर ऑल जब डेथ होता है वो अंत्येष्टि। तो ये तीनों का चर्चा अगले बार हम करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।